ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा कि सरकार प्रस्तावित कानून की आगे की जांच के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास इस विधेयक के बारे में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। इससे पहले श्री रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य धार्मिक निकाय के कामकाज में हस्तक्षेप करना नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के वंचित और गरीब वर्ग को न्याय प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि यह विषय संविधान की समवर्ती सूची में आता है और केंद्र इस पर कानून बनाने के लिए पूरी तरह सक्षम है। श्री रिजिजू ने कहा कि यह कानून सच्चर समिति और पिछली सरकारों की विभिन्न समितियों के सिफारिशों के अनुरूप लाया गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्डों के कामकाज में कई खामियां हैं और कुछ लोगों ने इन बोर्डों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि यह कानून पारदर्शिता लाने और मुस्लिम महिलाओं तथा पिछड़े मुसलमानों का उचित प्रतिनिधित्व तय करने के लिए लाया गया है। उन्होंने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर दिया कि विधेयक हितधारकों के साथ बिना उचित परामर्श के लाया गया है। श्री रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक को लाने से पहले हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और पूंजीगत व्यय से विकास को गति मिलेगी। वित्त मंत्री इस समय राज्यसभा में वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दे रही हैं। ये विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुके हैं। इससे पहले कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि देश में महिलाओं के लिए विशेष टैक्स स्लैब नहीं है। भाजपा की रामीला बेन बारा ने कहा कि यह बजट गरीबों, ग्रामीणों, युवाओं और महिलाओं के लिए है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डोला सेन ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर 18% जीएसटी वापस लेने की मांग की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज लोकसभा में भारतीय वायुयान विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि भारतीय विमानन अधिनियम वर्ष 1934 में लाया गया और इसके बाद उसमें समय समय पर कई संशोधन किए गए। उन्होंने बताया कि इन संशोधनों ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो जैसे संगठनों के कामकाज के मामलों में बहुत सारी अस्पष्टता और विरोधाभास पैदा किए। ऐसे में यह विधेयक इस मामले पर स्पष्टता रखेगा। ढाका में भारतीय उच्चायोग बांग्लादेश से वापस आने वाले भारतीय नागरिकों के संपर्क में है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि 9000 विद्यार्थियों सहित लगभग 19000 भारतीय नागरिक इस समय बांग्लादेश में हैं। उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय नागरिकों की सुरक्षा तय करने के लिए उच्चायोग के साथ संपर्क में है। इससे पहले सरकार ने भारतीय छात्रों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि विदेशों में भारतीय छात्रों को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि विदेश में भारतीय मिशन उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों को मदद पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर पूर्वानुमान को 7.2% पर यथावत रखा है। द्विमासिक समिति की बैठक के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को भूस्खलन प्रभावित वायनाड का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से वायनाड के कलपट्टा में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इस बीच केरल और कर्नाटक की सैन्य इकाइयों से आए लगभग 500 सैन्यकर्मी वायनाड से वापस लौटेंगे। पेरिस ओलंपिक में इस समय पुरुष हॉकी में कांस्य पदक के लिए भारत का सामना स्पेन से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत 1-0 से पीछे है। वहीं कुश्ती में अमन सहरावत पुरुषों के 57 किलो फ्री स्टाइल के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में आज रात अमन का मुकाबला जापान के हिगुजी से होगा। क्वार्टर फाइनल में अमन ने अल्बेनिया के अपकारोव को 12-0 से हराया था। आज करीब 12 बजे नीरज चोपड़ा भाला फेंक प्रतियोगिता के फाइनल में स्वर्ण पदक के लिए अपनी चुनौती पेश करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।